ये है तीन तीन 87 का कहते क्लास, सत्रह नंबर के रजिस्टर में 61 पेज रिकॉर्ड चला है। आखिर वो दिन आया आज सब भक्तों के लिए जरूर कोई दिन आना है। कौन सा दिन? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जरूर कोई वो दिन आना है। सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं, बाकी सब हैं सीताएं और भक्तियां, सभी दुखी हैं। याद करते करते आखिर वह दिन आता है जबकि बाप आकर के हाथ पकड़ते हैं। आकर के हाथ पकड़ते हैं, हाथ कौन सा? हाँ, उनको खिवैया कहा जाता है, बागवान भी कहा जाता है, पति पावन भी कहा जाता है। किसका खिवैया? नाव को खेलने वाले को कहा जाता है खिवैया। यहाँ कौन सी नाव है? शरीर रूपी नवैया, जैसे शरीर रूपी वस्त्र कहा जाता है वैसे शरीर रूपी नवैया भी कही जाती है। नवैया में आत्मा है बिठैया और परमात्मा है खिवैया। माना जरूर ये शरीर है, इस विषय वैतरणी नदी से पार क्षीर सागर में जाएगा, क्योंकि शरीर रूपी नवैया का खिवैया है। आत्मा को भी पार ले जाते हैं, क्योंकि बोला हुआ है तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार ले जाने वाला एक ही खिवैया है। और बागवान माना बाग का मालिक। अब बच्चे जानते हैं हमने एक का हाथ पकड़ा है, हाथ कौन सा बताया है? हाथ और साथ क्या है? बुद्धि का साथ है? और बुद्धि हाथ भी कही जाती है, जैसे कोई चीज कैच की जाती है हाथ से तो वो तो स्थूल हाथ हुआ। और बुद्धि से बात कैच की जाती है, तो ये भी हाथ हुआ। तो बुद्धि का हाथ और साथ कहा जाता है। बुद्धि माना मत, मति माना अकल, नास्तिक से आस्तिक बने हैं। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। बाप से ही वर्षा मिलता है ना। अब ये है बेहद का बाप, परम पिता। इसलिए सब बच्चे जो भक्त हैं वो उनको याद करते हैं, परंतु यह बात वो भक्त समझते नहीं है। कितना धूमधाम से बाजे गाजे से तीर्थों पर जाते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, है ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री। इसलिए भगवान को याद करते हैं, वो आकर के इसे दुर्गति से छुड़ाए, पुकारते रहते हैं, परंतु बाप का किसको पता नहीं। और जिसको बाप का पता ही ना हो वो तो जैसे बच्चा ही नहीं। बाप को न जानने के कारण, नास्तिक बनने के कारण दुखी दुख होता है। बाप का बच्चा बनने से सदा सुखी ही सुखी। बाप है ईश्वर का रहते था, वहां सब तो नहीं चलेंगे, लिमिटेड नंबर आएंगे स्वर्ग में जाने वालों के। बाप से वर्षा लेने वालों के, बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते। तो बाप से वर्षा कितने लेंगे, कितने लिमिटेड नंबर होंगे जो बाप से वर्षा लेने के लिए आते हैं। हाँ, जो डायरेक्ट बाप से वर्षा लेने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ हैं 4.5 लाख, ज्यादा में ज्यादा 9 लाख हैं। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता बनने का वर्षा, बाकी और जितनी भी आत्माएं भले सत्युग में आ जाएंगी, लेकिन फुल जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं लेंगी। कुछ न कुछ उनको मुक्ति में रहना जरूर पड़ेगा, कोई एक जन्म मुक्ति में रहेंगे, कोई 2 जन्म, कोई ज्यादा जन्म। तो वो सब है दूसरे धर्म वाले। जो द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, लेना तो सबको बाप से ही है, चाहे देवी देवता सनातन धर्म का पक्का हो, चाहे दूसरे धर्म का हो, मिलेगा सबको बाप से ही। परंतु मनुष्य इस समय जैसे बंदर मिसल हैं, शास्त्र में भी दिखाते हैं सीता को छुड़ाने के लिए राम ने बंदर की सेना ली, तो बंदरों की सेना ली क्या? वास्तव में इस समय के मनुष्य ही बंदर मिसल हैं। शास्त्रों में भी दिखाते हैं सीता को छुड़ाने के लिए राम ने सेना ली, ह्यूमन बंदर थे, सूरत मनुष्य की और चलन बंदर जैसी। दूसरा, जैसे बाप को नहीं जानते वैसे ही गीता को भी नहीं जानते। जब बाप को नहीं जानेंगे तो गीता माता को भी नहीं जानेंगे, क्योंकि गीता को जाने तो बाप को भी जाने। गीता है माता, बच्चा पहले माता को जानता है या पहले पिता को जानता है? पहले माता को पहचानता है। तो वो तो समझ लेते हैं गीता माता है ब्रह्मा, कौन दादा लिख रहा है। तो दादा लेखराज वाली सोल गीता माता है या कृष्ण बच्चा है? वो तो कृष्ण बच्चा है, सत्युग का फर्स्ट प्रिंस बनने वाला। उसके भी कोई माता पिता होने चाहिए। यज्ञ के याद में कोई ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। मुरली में आया है तो टीचर बनने वाले, ड्रिल कराने वाले बच्चे थे, उनके लिए मम्मा बाबा समझते थे कि ये बहुत अच्छा नंबर माला में आएंगे, परंतु बाद में वो भी गुम हो गए। तो ऐसी आत्माएं जो मम्मा बाबा जैसी श्रेष्ठ आत्माओं को भी डायरेक्शन देने की निमित्त थी, इतनी पावरफुल थी, तो जरूर वही आत्माएं माता पिता के रूप में पार्ट बजाने वाली थी। जगत पिता और जगदम्बा, इससे साबित होता है कि ब्रह्मा सरस्वती को तो बाद में टाइटल मिला है। ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती का, क्योंकि जब वो बच्चे चले गए तो जैसे माँ बाप के टाइटल को बच्चे धारण कर लेते हैं, ऐसे ही उन्हें राधा कृष्ण की आत्माओं ने अपने माता पिता के टाइटल को धारण कर लिया। वो माता पिता हैं सारे सृष्टि के बीज। कृष्ण पहला पत्ता है या बीज है? वो तो पहला पत्ता हुआ। तो परमात्मा शिव जब आते हैं तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए तो परमात्मा शिव ने प्रवेश कर लिया। साक्षात्कार होना अलग बात और प्रवेश करना अलग बात। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में ढेर भक्तों को होते रहे, तो क्या परमात्मा ने उनमें प्रवेश कर लिया, ऐसे मान लिया जाए? नहीं, ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों के अर्थ को वो खुद ही नहीं समझ सके, मुझ गए। गुरु से पूछा, उसने इनकार किया, बनारस गए, सोचा बड़े बड़े विद्वान आचार्यों से पता लग जाएगा, बाद भी कुछ पता नहीं लगा। आखिरी जैसे अद्वैत वाणी में बोला है, तरह से को ढूंढा कहां से? पूरी बंगाल। वैसे भी सूरज कहाँ से उदय होता है? पूरब से ही उदय होता है। तो उनकी जो दुकान थी हीरे जवाहरातों की, जिस दुकान को उन्होंने अपने भागीदार को सौंप रखा था, उस भागीदार के ऊपर उन्हें विशेष श्रद्धा विश्वास था। अपने जीवन में ये अनुभव किया कि ऐसा सच्चा आदमी, साफ आदमी उनको नहीं दिखाई पड़ा और होशियार भी। तो बाबा उसी के पास गए और उससे भी डायरेक्ट जाकर के नहीं पूछा, अपने सारे साक्षात्कार का हवाला कोई माता थी जिसको सुनाया। माता ने फिर उस भागीदार को सुनाया, तो भागीदार ने जैसे ही वो साक्षात्कार की बातें सुनी, वैसे ही परमात्मा शिव ने प्रवेश करके उसके थ्रू सारा क्लेरिफिकेशन दिलवाया उस माता को, जिसके लिए मुरली में बोला है ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देती थी। ये भी बोला 10 वर्ष से रहने वाला, माना कोई पुरुष भी था, ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को ड्रिल कराती थी, उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे, उनमें माना बहुवचन, वो ही माता पिता की जोड़ी हुई। कहते भी हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो शिव बाबा प्रजापिता के थ्रू शिव बाबा हुआ, क्योंकि साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। सिर्फ ज्योति बिंदु शिव को पिता कहा जाता है, वो आत्माओं का पिता है, बाबा नहीं। बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है। तो ज्योति बिंदु शिव ने जैसे ही साकार में प्रवेश किया भागीदार में, वैसे ही वो शिव बाबा हुआ। वो शिव बाबा ने सबसे पहले माता को एडॉप्ट किया। तो जो माता के द्वारा उस साक्षात्कार को भागीदार ने सुना, जो माता यज्ञ के आदि में ब्रह्मा और सरस्वती को भी पढ़ाई पढ़ाने के निमित्त थी, वो माता हो गई गीता माता। तो शिव जयंती पहले, उसके बाद गीता माता की जयंती, और फिर बाद में कृष्ण बच्चे की जयंती साबित होती। तो ब्रह्मा को अपने साक्षात्कारों के रहस्य का पता उस माता के द्वारा लगा। इसलिए यहां बोला कि गीता को जाने तो बाप को भी जाने। ब्राह्मणों की दुनिया में ये राज अभी भी छुपा हुआ है। रचयिता कौन और फर्स्ट रचना कौन? रचयिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा का साकार स्वरूप यज्ञ के आदि में कौन था? जो था उसको छुपा दिया गया और कृष्ण बच्चे को प्रत्यक्ष कर दिया गया। माना ब्रह्मा वाली सोच दादा लेखराज को प्रत्यक्ष कर दिया गया और प्रजापिता को गुप्त कर दिया गया। एक मुरली में बोला भी है, रानियों को भगाया, मक्खन चुराया, ये सब है प्रजापिता ब्रह्मा की कहानी, लेकिन नाम डाल दिया है कृष्ण का। अब कृष्ण कहो या ब्रह्मा कहो, बात एक ही है। शूटिंग पीरियड में ब्रह्मा का नाम डाल देते हैं पिताश्री मुरलियों में, और भक्ति मार्ग में कृष्ण का नाम डाल दिया जाता है। तो जब कृष्ण का नाम डाल दिया बाप की जगह, निराकार बाप की जगह, निराकारी स्टेज में रहने वाले बाप की जगह साकार कृष्ण का नाम डाल दिया, तो बाप को जानेंगे कैसे? बाबा ने कहा है तुम कहां भी जाकर के देखो, क्या क्या फालतू बातें सुना करके मनुष्यों को हैरान करते। बाप कहते हैं मैं तुमको सहज से सहज बात समझाता हूं। बच्चे मुझे अपने बाप को याद करो। और ये भी बाप समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे। किसको समझाते हैं? जिन बच्चों को समझाते हैं बाप, उनको ये भी बताते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे। हर 5000 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे। तो अपने लिए तो जैसे पुरानी बात है, कल्प कल्प तुम राज्य गवाते हो फिर पाते हो, 84 जन्म तुम ही लेते हो और सब 82-83 और कम जन्म ले सकते हैं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, लेकिन तुम 84 जन्म लेने वाले पक्के देवी देवता सनातन धर्म के बच्चे हो जो डायरेक्ट बाप से वर्षा लेते हो। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तुम बच्चे समझते हो हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर आकर के विषय सागर में फंसे हैं। क्षीर सागर है नहीं, परंतु पावन थे। फिर माया रावण ने पतित बनाया। अब फिर बाप पावन बनाने के लिए आए हैं। गीत में कहते भी हैं आखिर वो दिन आया आज भक्ति मार्ग में तुमको कोई ये आस नहीं थी कि हम स्वर्ग के मालिक बने। ये बात तो बुद्धि में थी ही नहीं। क्या कि हम इसी जन्म में स्वर्ग के मालिक बनेंगे? फिर क्या बात बुद्धि में थी कि इस जन्म में पुरुषार्थ करते करते ब्रह्मा सरस्वती की तरह मर जाएंगे और अगले जन्म में हमको स्वर्ग मिल जाएगा? तो असली बात जो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ है वो बुद्धि में नहीं था। जैसे ब्रह्मा को नर से प्रिंस बनना था, सरस्वती को नारी से प्रिंसेस बनना था अगले जन्म में, ऐसे ही हमारी बुद्धि में भी था। ये बात बुद्धि में नहीं थी कि जैसे पढ़ाई पढ़ते हैं तो इसी जन्म में प्रारब्ध पाते हैं पढ़ाई की, ऐसे कोई नहीं कहता कि इस जन्म में हम डॉक्टरी पढ़ेंगे अगले जन्म में डॉक्टर बन जाएंगे, इस जन्म में वकालत पढ़ेंगे तो अगले जन्म में वकील बन जाएंगे, ऐसे पढ़ाई कोई पढ़ेगा क्या? ये कोई एम ऑब्जेक्ट हुई क्या? तो बाप तो हमें आकर एम ऑब्जेक्ट देते हैं, बच्चे तुम इस पढ़ाई से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो बच्चे हम इस जन्म में हैं कि अगले जन्म में? इस जन्म में बच्चे बने हैं। ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार कब कहा जाए? जब ईश्वर से जन्म हमने यहाँ लिया तो ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार हमको अगले जन्म में मिलेगा क्या? तो ये किसी की बात बुद्धि में नहीं थी। ये बाबा भी बहुत गीता पढ़ते थे, सुनते थे, परंतु यह आस नहीं थी कि हम राजयोग सीखें नर से नारायण बने। यही बुद्धि में था कि जैसे ब्रह्मा सरस्वती नरकं छोड़ करके अगले जन्म में प्रिंस बन जाते, ऐसे हम भी बन जाएंगे। ये तो अनायास ही बाप ने आकर के प्रवेश किया। बाबा कहते हैं मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आस पूर्ण करने के लिए आया हूँ। तो आने का है मतलब क्या? स्वर्ग की आशा पूर्ण करना। तो एम ऑब्जेक्ट पूरा किए वापस चला जाएगा क्या? अब तुम बच्चे स्वर्ग में चलने की आस बुद्धि में धारण करो। हम बच्चों की बुद्धि में ही आस नहीं होगी तो परमात्मा बाप भी कुछ नहीं कर सकते। जिन बच्चों की बुद्धि में बैठेगा कि हमको इसी जन्म में स्वर्ग प्राप्त करना है, उन्हीं को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे गाय है ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, वैसे ही ब्राह्मणों के ही संकल्पों से स्वर्ग की सृष्टि रची जाएगी। अगर ब्राह्मणों की बुद्धि में ये बात नहीं होगी कि हमको इसी जन्म में स्वर्ग में जाना है तो प्राप्ति भी नहीं हो सकती। स्वर्ग का रचयिता है बाप कि मनुष्य देहधारी धर्मगुरु स्वर्ग रचेंगे क्या? मनुष्य स्वर्ग नहीं रच सकता। स्वर्ग की रचना तो परमपिता परमात्मा का ही काम है। तो ये बात बहुत सहज रीति समझाते हैं। बहुत सी सहज रीत समझाते हैं। हाँ, काम महाशत्रु है, ये तो सन्यासी भी कहते हैं, इसलिए घर बार भी छोड़ देते हैं। वो तो हुई एक दो की बात, उन्होंने कहा निवृत्ति मार्ग का पार्ट ड्रामा में है, है तो वो भी भक्ति। बाप को जानते नहीं तो उनको क्या कहेंगे? जो रचयिता और रचना को न जाने तो भक्ति ही हुआ। गॉड फादर कहते हैं, लेकिन बाप को न जाने तो मूर्मति ठहरे ना। फिर कहते हैं बजो राधे गोविंद। अब किसको बजे? कृष्ण का नाम फिर गोविंद रख दिया है। जो सुना सो उन्होंने लिख दिया। गो इंदु, इंदु माने चंद्रमा, गौ माने गौ, सन्यासी तो तत्व ज्ञानी है। अब बाला गोविंद किसको कहते? गौओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला। अब कोई जानवर गऊ की तो बात नहीं। भारत में कन्याएं माताओं को ही, भारत की कन्या माताओं को ही गऊ मिसल कहा जाता है। जिस खूंटे से बांधी जाती हैं, जीवन भर उसी खूंटे से बंधी रहती। तो ये भारत की चैतन्य गऊए हैं, ह्यूमन गऊए। उन गऊओं को चराने वाला अर्थात चलाने वाला, मुरली सुनाने वाला, तो हुई ह्यूमन गऊ की बात। आगे तुम भी मूणमति थे तो मूणमति मूणमति से क्या पूछेंगे? अभी बाप ने आकर तुम्हें सुमति दी है, माया रावण कुमति देता है और बाप आकर के सुमति देते हैं। क्या सु माना? सुंदर, मत माना अकल। तो सुमत है शिव बाबा की और कुमति है रावण की। सुमत माना श्रीमत और कुमत माना झूठी मत। संकास्ट को जानते हो? दूसरा बेट, हम झूठी मत पर थे। स्वर्ग की तो हमको आस ही नहीं थी इस जीवन में कि हम इस जीवन में स्वर्ग प्राप्त करेंगे। तो ये किसकी मत हुई? झूठी मत पर थे या सच्ची मत पर थे? झूठी मत पर थे। अभी बाप ने नई आशा प्रकट की है। क्या? कि हम इसी जन्म में पढ़ाई पढ़कर पुरुषार्थ पूरा करके स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। वहां स्वर्ग में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती जिसके लिए माथा मारना पड़े। अब तुम सबको नई आस है, बल पुरुषार्थ नंबर वार करते हैं, बाप तो नंबर वन मत देते हैं। कहते हैं ये तो ऐसा है जो ब्रह्मा भी उतर आए तो भी उनकी मत नहीं लेंगे, नहीं मानेंगे। तो ये पिछाड़ी की महिमा है। तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाएगी जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे। वाह वाह निकलेगी। अभी तो चरते गिरते रहते। अभी अभी खुशी में नाचते हैं, अभी अभी मुर्दा बन पड़ते। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है, कहां न कहां मत मुझाए देती है। जो हम स्त्री मत को छोड़ रावण की मत पर चल पड़ते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी लेते रहो, किसे? बाप से। श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारी आशा भी तो प्रगट बाप ने की है ना। तुम्हारे अंदर तो ये आस थी ही नहीं कि हम जीते जी स्वर्ग में जा देंगे। श्रीमत से ही ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तत्त्वम जो लक्ष्मी नारायण बने वही तुम हो, तो ये बात भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो श्रीमत लेने का चांस ही नहीं देती। श्रीमत किससे मिलेगी? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप से श्रीमत मिलती है, किसी साकार कर्म के द्वारा। और माया, माया रावण हमको बुझा देता है, वो हमको उल्टी अकल देता है कि परमात्मा बाप है ही नहीं, वो एक व्यापी है ही नहीं, वो तो सर्वव्यापी। तो कहां न कहां उल्टा काम कर, टाइम नहीं मिला जो राय ले में। 3-3 87 का प्रातः क्लास 17 नंबर के रजिस्टर में दूसरा पेज मध्य आदि। तो आप क्या करें? माया ने तुमको थप्पड़ मारा, इसमें बाप क्या करेंगे? हर बात में कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे स्त्री पुरुष इकट्ठे रह करके पवित्र रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं। सन्यासी तो खुद ही घर घाट छोड़ करके आते हैं पवित्रता के लिए, आश्रम के वातावरण में रहते हैं, तो उन्हें किसी गृहस्थी पर यह विश्वास नहीं हो सकता कि ये साथ में रह करके पवित्र रह सकता है। इसमें युक्तियां बहुत हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना कितनी बड़ी युक्ति है, इस बात की युक्ति कि हम ब्रह्मा के कुमार और कुमारी हैं, आपस में भाई बहन है। जब आपस में भाई बहन है तो पतितपना हो नहीं सकता। ये पवित्र बनने की युक्ति हुई। तुम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणी बनते हो तो कहीं कुल को कलंक नहीं लगाना। ये ईश्वरीय कुल है, वो तो ऐसे ही मंदिरों में जाकर गाते रहते हैं, तुम मात्र पिता हम बालक तेरे। तो मात्र पिता के जब बालक हुए तो आपस में क्या हुए? भाई बहन हुए ना। बहन भाई का नाता कब उल्टा होता नहीं। ला नहीं जो बहन भाई आपस में शादी करें। यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते हैं। इस पर फिर वह लोग हंसते हैं कि ये फिर कहाँ का नया रिवाज निकला, ये तो है ही नहीं बात। ऐसी राय कब कोई दे नहीं सकता। कोई पूछे तो ब्रह्मा कुमार क्यों कहलाते हो, तो समझाओ इतने सब ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो ये भाई बहन हो गए। हमें है प्रैक्टिकल में भाई बहन, क्योंकि हमारे माँ बाप हैं प्रैक्टिकल में। उन ब्राह्मणों से पूछो, इसलिए मुरली में बोला कि उन ब्राह्मणों से पूछो, तुम अपने को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? ब्राह्मण कहते तो ब्रह्मा बाप भी तो होना चाहिए, तो कह देंगे सूक्ष्म वतन। तो ब्रह्मा बाप सूक्ष्म वतन में और बच्चे साकार वतन। तो यहाँ तो नई बात है, बुद्धि में बिठाना है, बुद्धि की मदद देनी चाहिए, क्योंकि सभी की बुद्धि का ताला बंद है, पत्थर बुद्धि है। तो तुमको उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर्स हैं, इनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। मुरली का वहां वाक्य है, पत्थर बुद्धि है, उनकी बुद्धि का ताला बंद है, तुमको उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर्स हैं, इनकी बुद्धि का ताला। जो सेंटेंस में रहने वाले पत्थर बुद्धि बने पड़े हैं, उनमें सभी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। लेकिन जानते नहीं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं प्रैक्टिकल में, तो ब्रह्मा भी तो होना चाहिए ना, तब तो भाई बहन ठहरे ना। फिर वह क्रिमिनल एहसास कर न सके। अगर ऐसे क्रिमिनल एहसास होते हैं तो इससे साबित होता है कि अब बुद्धि में ये बात बैठी नहीं है, और न बैठने का कारण है कि प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाप है नहीं। तो ये तो नई रचना है ईश्वर की। वो कहते हैं गीता में तो ये कभी हमने सुना नहीं है। अरे गीता तो है झूठी, उसमें फिर ये बातें कैसे लिख सकते। बाप कहते हैं ये तो मैं तुमको सिखलाता हूँ। क्या कि घर गृहस्थ में रहते तुम अपन को कैसे भाई बहन समझो। फिर तो न शिव बाबा होगा, न ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगी। जब हम पवित्र बन जाएंगे, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, ये ज्ञान भी प्रायः लोक हो जाएगा। फिर कहां सुन सकेंगे। अभी मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूं, जब राजधानी की स्थापना पूरी हो जाएगी तो फिर ये सब खलास हो जाएंगे। कौन खलास हो जाएंगे। जो परमात्मा बाप को न पहचानने वाले हैं, जो भाई बहन न बनने वाले हैं, वो सब सब खलास हो जाएंगे। लेकिन पहले राजधानी स्थापन होगी। जब तक पूरी राजधानी स्थापन न हुई है, तब तक पूरा विनाश नहीं हो सकता। पांडवों ने राजधानी स्थापन की, ये भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं तो थे पावन दुनिया के मालिक, दैत्य हैं पतित दुनिया के मालिक। तो दोनों की फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती। स्वर्ग से नरक में आकर लड़ाई करेंगे क्या। तो बात कहां की हुई। इस समय संगम युग की बात है कि दैत्य तो पड़े हुए हैं नरक में, और हम बच्चे, हमारी बुद्धि लगी हुई है बुद्धि से, हम कहां हैं। नई दुनिया में स्वर्ग में। उनकी बुद्धि में नहीं है कि हम कोई से जन्म में स्वर्ग में जाना है। उनकी तो बुद्धि इस जन्म में नरक में ही लगी हुई है, नरक के सुख महल मानिया बनाने करने में। तो ऐसे नहीं कि दैत्य कोई नरक में थे और देवताएं कोई स्वर्ग में थे। ये तो संगम युग की बात है। संगम युग में दोनों ही प्रकार की आत्माएं इस ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद हैं। एक वो जिनकी बुद्धि में स्वर्ग समाया हुआ है कि हमको इसी जन्म में स्वर्ग में जाना है, वो तो हुए देवताएं। और जिनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती हुई है, नरक की ही दुनिया उनको चारों ओर देखने में आती है कि अभी तो ये दुनिया बहुत लंबी चलेगी, खूब महल माड़ियां अटारियां बना लो, दुनिया के सुख ले लो, पैसा इकट्ठा कर लो, तो वो तो नरक की दुनिया के ही बातें हुए। तो ऐसे दो प्रकार के ब्राह्मण हो जाते हैं, झूठे और सच्चे, कुखवंशावली और मुखवंशावली। मुखवंशावली जो वो जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को मानते हैं और किसी मनुष्यों की बात को नहीं मानते, और कुखवंशावली कौन, जो ब्रह्मा की कोख अर्थात गोद की याद में रहते हैं, क्योंकि उनको गोद याद आती है, ब्रह्मा के मुख के महावाक्यों को कोई वैल्यू नहीं देते। तो जहाँ असुर हैं वहाँ देवताएं कोई नहीं होते, ये हिसाब ही नहीं बनता जो वो आकर के अपना लश्कर ले आकर के लड़ाई करें। जरूर संगम होना चाहिए, इसका संगम, नई दुनिया और पुरानी दुनिया का संगम, दैत्यों और देवताओं का संगम। जहाँ असुर है वहाँ देवता कोई नहीं होते, और जहाँ देवताएं होते हैं वहाँ असुर नहीं होते, और वो पांडवों की लड़ाई भी लग न सके। जो श्रीमत पर चलते हैं वो कब किसको लड़ाएंगे कैसे, न खुद लड़ेंगे और न दूसरों को लड़ाएंगे। लड़ने वाले हैं मनुष्य, बाप लड़ने अथवा जुआ आदि खेलने की छुट्टी नहीं देते। पांडव कोई मूर्ख थोड़े थे जो श्रीमत पर जुआ करेंगे या आपस में लड़ेंगे, ये सब है झूठ बातें, तो वो बातें भी समझाना पड़े कि परमात्मा ने कोई वो स्थूल जुआ खेलना नहीं सिखाया था, ये तो तन धन धाम स्वर्ग परिवार की बाजी लगाने की बात है, अपने सब संबंध ईश्वरीय सेवा में अर्पण करने की बात है, बाकी कोई स्थूल जुए की बात नहीं है कि बीवी बच्चों को द्रौपदी को दांव में लगाई दिए। गीता में है ज्ञान की बात है, विद्वान पंडित आदि सब गुरु गुरु करेंगे, क्योंकि उन्हों की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। कौन सी दुनिया के विद्वान पंडित आदि गुरु गुरु करेंगे, कौन गुरगुराएंगे, ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया की बात है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े अड्डे निकाल करके बैठे हुए हैं। समझो बाप के पास आते हैं जिनकी बहुत बड़ी संस्थाएं हैं, वो बाप के पास आते हैं, उनके तो बहुत फॉलोअर्स हैं, समझ कर कहते हैं हम वहां जाकर के ये शंख बजाएंगे, परंतु कहां भी जाकर सुनाएंगे तो सब कहेंगे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों से सीखा है। कौन से ब्रह्मा कुमार कुमारियों से, उन तथाकथित नहीं, उन ब्राह्मणों से नहीं, जो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं उनसे सीखा है, वो तो कुछ भी कहते, हमारी रोटी को लात आ जाती है। कौन कहते, सन्यासी, कि अगर हम ये ब्रह्मा का ज्ञान सुनाएंगे, सच्ची बात सुनाएंगे तो क्या होगा, हमारी पेट को लात लगती है, हमारा धंधा खत्म हो जाता है। ऐसा कोई नहीं जो इतनी बेइज्जती सहन कर सके, सन्यासियों में ऐसा कोई नहीं, तो टाइम लग जाता है, कितनी युक्ति सिखाई जाती है,
बाबा ने समझाया है कि ये बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। क्या नाम है इसका? रुद्र ज्ञान यज्ञ, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ, शिव ज्ञान यज्ञ, नारायण ज्ञान यज्ञ, ये नाम नहीं दिया। विष्णु ज्ञान यज्ञ, ये नाम नहीं दिया। नाम क्या दिया? रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र का ज्ञान। यज्ञ के आदि में भी उस रुद्र ने जब रौद्र रूप धारण किया था तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला विनाश ज्वाला कब प्रज्वलित हुई, कौन निमित्त बने। फिर अव्यक्त वाणी में ही जवाब दिया, ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण निमित्त बने विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने के लिए। तो जो यज्ञ के आदि में विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है उसी ज्वाला को अब संपन्न करना है। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, यज्ञ का आदि भी रुद्र के द्वारा हुआ, रौद्र रूप धारण करने वाले के द्वारा। कौन निमित्त बताए, निमित्त कौन बने? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे, यानी माता पिता पहले आपस में टकराए रुद्र और रुद्राणी के रूप में। रुद्रमाला होती है ना, तो रुद्रमाला में कोई आदि वाले दो मण के भी तो होंगे ना, जो पहले पहले होते हैं, तो वो हो गए रुद्र और रुद्राणी। उनके द्वारा ये ज्ञान यज्ञ शुरू होता है। आज में भी हुआ था और अंत में भी इसकी संपन्न आहुति उन्हीं के द्वारा होती है जो यज्ञ के आज में थे, शरीर छोड़कर के चले गए। फिर कोई बच्चे यज्ञ में आकर के दोबारा ब्राह्मण बनकर के इस ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। बाकी ज्ञान यज्ञ है, कोई दीवानों का मेटेरियल यज्ञ नहीं है कि प्रदर्शनी करो, मेले मला खड़े करो, सेंटर जमाओ, ये करो वो करो, नहीं। ये तो घर गृहस्थ में रह करके ही ये ज्ञान यज्ञ चलाया जा सकता है। इसके लिए कोई मेटेरियल की दरकार अलग से नहीं है। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे, इस यज्ञ की ये विशेषता है। विष के लिए कितना तंग करते हैं बोलो, हमको साक्षात्कार होता है। विष के लिए तंग करते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे ये बात लागू होती है? ब्राह्मणों की दुनिया का ही ये चित्र बना हुआ है, सीढ़ी का चित्र। उस सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखा हुआ है आए शिव बाबा बचाओ, और आक्रमण करने वाला सफेद पोश दिखाया हुआ है चेहरी से लेकर के चोटी तक। कोई सफेद पोश ब्रह्मा कुमारी है? तो ये उदाहरण दिया है। विष के लिए कितना तंग करते हैं बोलो, हमको साक्षात्कार होता है। हमको भगवान कहते हैं, काम महाशत्रु है, इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तो काम कटारी चलाना बंद करो। ये काम कटारी कोई स्थूल इंद्रियों के ही नहीं होती है, सूक्ष्म इंद्रियां जो ज्ञानेन्द्रियां हैं उनसे भी होती है। आंख है सबसे बड़ा धोखा देने वाली है, बताइए। तो जो सबसे जास्ती धोखा देने वाला अंग है उसको व्यभिचारी बनाना चाहिए या अव्यभिचारी बनाना चाहिए? उसको तो पहले अव्यभिचारी बनाना चाहिए। तो आंखें ही अगर विखैली हुई तो कर्मेंद्रियां भी विखैली बन पड़ेंगी, व्यभिचारी बन पड़ेंगी। इसलिए बोलो कि हमको साक्षात्कार होता है, हमको भगवान कहते हैं, काम महाशत्रु है। ऐसे ऐसे समझाने से तुम बहुत जीत पाते हो। फिर उनको देवी कह करके पूछते, मदद भी उनको ही मिलती है। हिम्मत बच्चे मदद बाप। तीसरा पेज, मनुष्य तो सुन करके डर जाते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते पवित्र रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। जो देव आत्माएं होंगी वो नहीं डरेंगी, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए होंगे उनकी बुद्धि में तो फट से बैठेगा कि स्त्री पुरुष साथ में रह करके, साथ में सो करके, साथ में खाते पीते काम करते, एकांत में रह करके भी पवित्र रह सकते हैं। लेकिन जो सन्यासी होंगे उनकी बुद्धि में ये बात जचेगी नहीं, जो आश्रम के पवित्र एकांत वातावरण में रहने के आदि हैं, वो समझते हैं जरूर कुछ जादू होगा। ऐसे सत्संग में कब नहीं जाना। शुरू में बच्चियां भागी तो वह नाम हो गया, कौन सा नाम हो गया कि कोई जादूगर आया है जो बच्चियों को भगा लेता है घर बैठे। तो जो आदि में हुआ वो अंत में भी जरूर होगा। बच्ची जो बनी तो जरूर भागी होंगी ना, बांधेलियों को बहुत राय मिलती है, इसमें बहादुरी भी चाहिए। गरीब तो समझेंगे कोई हर्जा नहीं है, इसके कारण हम स्वर्ग की राजाई क्यों गवाएं, ये घर से निकाल लेंगे, अच्छा हम जाकर के बर्तन मानेंगे झाड़ू लगाएंगे। बड़े घर वाले ऐसे छोड़ न सके, गरीब तो झट छोड़ देते। शुरू में तो तुम बच्चियों का पार था, कौन सा पार, घरगार छोड़ने का, उस प्रकार की स्थूल बत्ती बनने का, गरीबों के लिए बहुत है। बाबा कहते हैं बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना साफ करना पड़ेगा, माया के तूफान भी जोर से आएंगे, बच्चे आदि भी याद पड़ेंगे, इसलिए खबरदार रहो, नष्टो मोहा बनो तब बात है। शिव बाबा की मछली देनी पड़ती, ज्ञान मिला है कपड़ा भल कैसा भी पहनो, हर्जा नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि सफेद कपड़ा ही पहनना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले जाते हैं। नैनों पर बिठाने का मतलब क्या हुआ कि दृष्टि की पावर से तुम बच्चों को खींचते हैं औरों को नहीं खींचते। साधन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में ज्योति जगाते हैं ना, तो यहाँ मटकी कौन सी हुई, ये बुद्ध रूपी मटकी है जिसमें याद की ज्योति जगती है। बाप आते ही हैं तुमको गुलगुल बनाकर ले जाने के लिए, पवित्र तो सभी बनेंगे। पापों का बोझ सिर पर बहुत है तो हिसाब किताब अंत में चुप चुप करके जाना है। तुम इतनी मेहनत करते हो, जो नहीं करते हैं वो ऐसे ही थोड़े ही मुक्ति में आ जाएंगे। कयामत के समय खूब सजा खा करके फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आत्मा का जो स्वधर्म है साइलेंस, क्योंकि हम अशरीरी हो बैठते, इन कर्मेंद्रियों से काम नहीं लेते, चुप हो बैठ जाते, परंतु वो भी कब तक। आखिरी कर्म तो करना ही है। साधु संत आदि कोई को भी ये पता नहीं है कि आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। सन्यासी लोग शांति को ढूंढने जाते हैं। बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है, फिर हम जंगल में क्यों जा रहे हैं? हम तो कर्मयोगी हैं, कर्म करते बाप को याद करना है। इसलिए बाबा कहते भल कर्म इंद्रियों से कर्म करो परंतु मेरी याद में रहो, तुम विकर्म विनाश हो, फिर स्वर्ग को भी याद करो। तेसठ जन्म भक्ति की घमासान ने हैरान कर दिया, अभी तुमको सब हंगामों से छुड़ाए देते। बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं कि अब आचार्य जी बनो क्योंकि तुमको मेरे पास आना है। मेरे पास आना है, आचार्य जी बनो ये किसको डायरेक्शन दिया? बच्चों को डायरेक्शन दिया तो बच्चे पास आ गए हैं तब तो डायरेक्शन दिया। फिर मेरे पास आना है इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, जो बाप की स्टेज है वो बच्चों की भी स्टेज बने। बाप की स्टेज का यादगार मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर है? देवताओं के मंदिर भी यादगार हैं और बाप का यादगार मंदिर भी है शिवलिंग, उसमें दिखाया गया है कि कैसे बच्चे आसपास बैठे हुए हैं, सब देवता हैं, एक की याद में बैठे हैं, एक की उपासना में बैठे हैं और वो एक माता पिता बीच में बैठे हुए दिखाए गए। माता का रूप और पिता का रूप, क्योंकि माता पिता स्त्री पुरुष शब्द का सूचक है, उनकी जो निशानी है वो मंदिर में दिखाई गई। मंदिर में माँ बाप की कर्मेंद्रियां दिखाई गई हैं, ये दिखाने के लिए कि कर्मेंद्रियों से कर्म तो करते हैं लेकिन वो कर्म आज भी मंदिर में पूजा जाता है। पूजा पवित्रता की होगी या अपवित्रता की होगी? पवित्रता की पूजा होती, नहीं तो जगन्नाथ के मंदिर में, सूर्य मंदिर में, कोणार्क के मंदिर में जो भी देवी देवताओं के चित्र हैं, जिन्हें देखने वाले समझते हैं कि ये गंदे चित्र हैं, तो वास्तव में उनमें कोई गंदगी नहीं है। ये देखने वालों की आंख की कमी है जो उस बात को नहीं समझते कि ये किस प्रकार पूजे जाते हैं। नहीं तो अश्लील चित्र को गवर्नमेंट रखने नहीं देती, लेकिन गवर्नमेंट में भी इतनी ताकत नहीं है जो उन मंदिरों में से उन चित्रों को निकाल करके बाहर कर सके। तो जरूर कोई यथार्थ बात और है जो किसी की बुद्धि में नहीं। तो तुम बच्चों को मेरे पास आना है, मेरे पास आने का मतलब कोई स्थूल में पास आने की बात नहीं है। जो मेरी स्टेज है एवर प्योर, एवर प्योर की भी परीक्षा हो तब एवर प्योर कहा जाए या बिना परीक्षा के एवर प्योर साबित हो जाएगा? एवर प्योर किसे कहें? दूरबाज खुशबाज होकर के कोई जेल में रहे 10 साल और 10 साल के बाद जब बाहर निकले तो कहे मैंने 10 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो क्या ये यथार्थ बात हुई? ये तो मजबूरी हो गई। तो ऐसे ही परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आकर के ये बताते हैं कि तुम बच्चों को कर्मेंद्रियों से कर्म बल करो लेकिन याद मेरी हो। बुद्धि जो है वो उन कर्मेंद्रियों के भोगों में आसक्त न होने पाए। जब चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म करो और जब चाहे तब न करो, पूरा कर्मेंद्रिया अपने कंट्रोल में हो। तो ऐसी स्टेज तुम बच्चों की भी बने। ऐसी स्टेज में तुम बच्चों को मेरे समीप आना है, निराकारी निर्विकारी निसंकल्प स्टेज। निसंकल्प होंगे, बीज रूप स्टेज होगी तो निराकारी भी बनेंगे। निराकारी बनेंगे, देह भान नहीं होगा तो निर्विकारी भी साबित हो जाएंगे। फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। जब ऐसी स्टेज तुम बच्चे बनाए लेंगे, कैसी स्टेज? अतीन्द्रिय सुख की स्टेज। इंद्रियों के होते हुए भी, इंद्रियों से कर्म करते हुए भी अतीन्द्रिय सुख, इंद्रिय से परे का सुख लेने वाले, मन बुद्धि से सुख लेने वाले, तो ऐसी स्टेज जब बन जाएगी तब तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। इसमें हंगामे आदि की कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने धक्के खाए तो फिर भी खाने पड़ेंगे। क्यों? ऐसे क्यों कहा कि भक्ति मार्ग में भी धक्के खाए अब फिर भी धक्के खाने पड़ेंगे? अभी तो हमें बाप मिल गया, भले बाप मिल गया लेकिन बाप मिलने के बावजूद भी अगर हम बाप की मत पर न चले और फिर भी देहधारी धर्म गुरुओं की मत पर चल पड़े तो क्या होगा अंजाम? फिर भी धक्के खाने पड़े। सबको पुनर्जन्म लेते लेते समूह प्रधान बनना ही है। यहाँ ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी पुनर्जन्म हो रहा है। पुनर्जन्म का मतलब क्या? ज्ञान की भाषा में कोई जन्म लेता है ज्ञान में तो कहते हैं बच्चा जन्म लिया। और जब उसको अनिश्चय हो जाता है, ज्ञान से अनिश्चय हुआ यानी बाप की पहचान होने के बाद बाप को भूल गया, माना बच्चा मर गया, तो ये जन्म और पुनर्जन्म का चक्र ब्राह्मणों की दुनिया में भी चल रहा है। तो ये अगर पुनर्जन्म बराबर लेते रहेंगे, निश्चय बुद्धि अटल नहीं बन सकेंगे, तो जितना जिधर जितना निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहेंगे उतना उतना आत्मा नीचे गिरती जाएगी। तो करना क्या चाहिए कि एक बार अगर बाप का निश्चय कर लिया, एक बार बाप को पहचान लिया, स्वीकार कर लिया, तो फिर उस अटल निश्चय से कभी पीछे पीछे नहीं हटना है और बाप की मत पर ही चलना है। इधर उधर धक्के खाने की बात पैदा नहीं करनी। अच्छा, मीठे मीठे सिकींदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, कैसे बच्चों के प्रति मीठे मीठे? कभी भी किसी कार्य व्यवहार में, कोई चलन में मीठे की जगह कड़ुए न बन जाए। कोई भले कैसा भी पार्ट बजाए लेकिन बच्चों की चलन कैसी रहे? मीठी। और सिकिल्दे मन बहुत समय के बाद मिले हुए, जैसे कोई बिछुड़ जाता है तो बहुत समय के बाद मिलता है तो बड़े सिख से बड़े प्यार से मिलते हैं। तो ये बच्चे भी कब बिछुड़े थे? यज्ञ के आज से बिछुड़े हुए ऐसे बच्चों के प्रति, जो यज्ञ की याद में ही बिछुड़ गए थे, ऐसे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। दोनों शब्द अलग अलग क्यों बोले? माता पिता अलग बोल दिया, बाप दादा अलग बोल दिया, तो क्या अलग अलग आत्माएं हैं? जरूर है। माता पिता माना जगत पिता और जगदम्बा के रूप में, जो माता पिता का पार्ट बजाने वाले यज्ञ के आज में थे, जिनके द्वारा ब्रह्मा को भी जन्म मिला, दादा लेखराज को, कृष्ण की सोल को भी जन्म मिलता है, वो हुए माता पिता। वो यज्ञ के आज माता पिता वाली आत्माएं अभी भी ब्राह्मण की दुनिया में काम करती है, जिनमें ब्रह्मा सरस्वती की सोल प्रवेश करके कार्य करती है। और फिर बाप दादा, मात और पिता कहने से ही जाहिर होता है कि एक पुरुष है एक स्त्री है, दोनों अलग अलग हैं और बाप दादा ये है कंबाइंड। चाहे तो बाप दादा हम शिव को कहें, शिव को जब हम बाप कहेंगे, बाप को